सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। यहाँ सम्यक से अर्थ है सम्यक दर्शन से। हाँ, यहाँ जो सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पर दोनों को अलग अलग ही जानना, भिन्न आराधो अर्थात दोनों को जब समझो तो अलग अलग ही समझना, और उनके बीच जो निर्बाध रूप से अंतर है, दुहु में भेद अबाधो अर्थात बिना किसी बाधा के दोनों में भेद कौन सा है, तो कहते लक्षण श्रद्धा जान। एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण जानना है, इतना ही दोनों में बिल्कुल निर्बाध रूप से अंतर पाया जाता है। और सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, और दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। इस तरह कार्य और कारण की अपेक्षा से भी दोनों में फर्क है, और लक्षण की अपेक्षा से भी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। हालांकि युगपद होते हुए प्रकाश दीपकते हुए, हालांकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक दूसरे के कारण और कार्य हैं, इसके बावजूद भी एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दीपक में ज्योति जलती है तो प्रकाश भी उसी के साथ में हो जाता है। जब ज्योति, पहले ज्योति जले फिर बाद में प्रकाश हो गए, ऐसा नहीं है, जिस क्षण ज्योति जली उसी क्षण प्रकाश हो गया। तो जैसे दीपक की ज्योति से प्रकाश पृथक काल में नहीं होता, इसी तरह सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, उसको भी समीचीन मान लिया जाता है श्रद्धान के साथ ही। इतना तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। फिर कहते हैं कि वह जो सम्यक ज्ञान है वो दो प्रकार का है। तास भेद दो हैं परोक्ष परतच तिन माही, मति शुद्ध दोए परोक्ष अक्ष मनते उपजाही, अवध ज्ञान मन परय जो है देश प्रदच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण दिए जाने जिय स्वच्छ। अब सम्यक ज्ञान का क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन बता दी, अब क्लासिफिकेशन करते हैं कि सम्यक ज्ञान दो प्रकार का है, एक परोक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष होता है, हमारे अपने जीवन में देखने में आता है। कुछ चीजें हैं जो हम परोक्ष रूप से जानते हैं, कुछ चीजें प्रत्यक्ष जानते हैं। ये जो हम प्रत्यक्ष और परोक्ष जानते हैं वो सामान्य परिभाषा है ज्ञान की, यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष के अर्थ भिन्न है। यहाँ जब हम किसी दूसरे के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो सब परोक्ष है, चाहे फिर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जाने, चाहे हम अपने मन के द्वारा जाने, वो सब ज्ञान परोक्ष कहलाएगा। और जब हम इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जानते हैं तब वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। वैसे सामान्य रूप से देखने में मैं कहता हूं कि ये टेप मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूं, तो कहती प्रत्यक्ष कहां जान रहे हैं आप, इस टेप को आप इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है। विदाउट मीडिया होता तो हम डायरेक्ट मानते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मायने ये है कि विदाउट मीडिया और विद मीडिया। तब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, पांच प्रकार का ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अवध ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होते हैं, विदाउट मीडिया होते हैं, इसलिए डायरेक्ट कहलाते हैं। इसमें भी जो अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है ये लिमिटेड है, इनकी लिमिटेशन है, इसलिए ये पार्शियल ही हैं। प्रत्यक्ष तो हैं लेकिन ये आंशिक रूप से प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनको देश प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। सकल प्रत्यक्ष तो मात्र केवल ज्ञान है। वही बात इसमें कही कि मन अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान दो ज्ञान आंशिक रूप से पार्शियली जो है वो डायरेक्ट हैं, या कि देश प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, तो कहते द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा के अनुरूप जो रूपी पदार्थों को जानता है प्रत्यक्ष रूप से, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि मतलब लिमिटेशन, जिसकी अपनी लिमिटेशन है, द्रव्य क्षेत्र काल, या अपन आज की भाषा में कहें कि जिसमें क्षेत्र काल की सीमा है, सामान्य रूप से अपन स्पेस और टाइम में ही माप पाते हैं, तो जिसमें देश काल की सीमा है, ये लिमिटेशन हो गई उसकी, उस और रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जानता। जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श है जो इंद्री का विषय बनता है, उस पदार्थ को जानेगा, जो इंद्री का विषय नहीं बनता ऐसे अमूर्त पदार्थ को ये अवधि ज्ञान अपना विषय नहीं बना पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसलिए ये अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। मन पर्याय ज्ञान दूसरे के मन के आलंबन से दूसरे के मन में स्थित विचार को जान लेता है, इसलिए मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। वो भी किसी के सोचे हुए, आगे सोचे जाने वाले या आधे सोचे हुए सभी विचारों को जान लेता है। अनसोचे अनसोची बात को भी जान लेता है कि ये बाद में सोचेगा। इस तरह मन है परे ज्ञान की अपनी विशेषता,
सोचा नहीं है फिर भी
जान लेगा कि ये आगे सोचेगा। आधा सोचा है तो भी जान लेगा, सोच कुछ रहा है, बाहर में प्रकट कुछ कर रहा है, ये भी जान लेगा। क्या बाहर से एक्सप्रेस ऐसा कर रहा है, सोचता आप ये रहे, एक्चुअली आपका वर्क जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन आपका सोच तो दूसरे डायरेक्शन में। ऐसे कुटिल को भी जान लेगा, सरल को भी जान लेगा, सरल मन वचन काय की क्रिया को भी जान लेता है कि जो मन में सोचा है वही कर रहे हैं, वही वाणी में कह रहे हैं। एक ऐसा भी मन मन है परे ज्ञान है, उसको ऋजुमति मन है परे कहते हैं। और जो विपुलमति है कि आप एक्शन तो कुछ और कर रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं और सोच तो कुछ और रहे हैं, तो वो बता देगा कि आप सोच क्या रहे हैं। जैसे अपन कई बार व्यक्ति के एक्शन देख के कहते थे ना कि आपका सोच ये है, आप इस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई सामान वामान जुटा रहा हो तो अपन जनरली क्या कह देते हैं, क्यों भाई लगता है कुछ क्या कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं क्या। अब ये तो हमने अनुमान से बता दिया, लेकिन जो मन है परे ज्ञानी होंगे वो हमारी किसी भी तरह की क्रिया से मन में हम क्या सोच रहे हैं वो बता देंगे। और कई बार अपन वचन तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमारा आपके प्रति बहुत अच्छा भाव है, वचन से प्रकट हो रहा, लेकिन भीतर भीतर हमारा भाव अच्छा नहीं है, तो वो पकड़ लेते हैं मन है। हाँ वो इंट्यूशन से कई बार मालूम पड़ जाता है।
तुम्हारा जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो तो अभी होता नहीं, प्रत्यक्ष ही हो रहा है, पर फिर भी ऐसा तो देखा गया है कि उसके मन की बात कई बार ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि मेरे मन की बात किसी और ने जान ली।
हाँ, तो ये कोइंसिडेंस है, फैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अनुमान है। तो अनुमान ज्ञान तो हो सकता, वो तो शुद्ध ज्ञान का भेद है अनुमान ज्ञान, वो तो हमने एक अपना अपने एक एक्स्ट्रा अपने पास ज्ञान की थोड़ी सी क्वालिटी है अपने शुद्ध ज्ञान की ही, जिसके माध्यम से हमने जान लिया। ये भी इनडायरेक्ट है, इसमें भी कोई ना कोई मीडिया तो बना, इसमें इंद्रिय और मन को कुछ ना कुछ व्यापार तो करना पड़ा है। मन में जो है अपने बहुत पहले से इस तरह के विचार पड़े हुए थे, उनका आलम्बन लेकर के हमने और इसको जान लिया कि ये ऐसा होना चाहिए, मुझे लग रहा है आपका विचार ऐसा होना चाहिए।
कि वो पार्शियल मन पर्याय ज्ञान हो
नहीं, मन है परे ज्ञान तो मन है परे ज्ञान के लिए कंडीशन है कि वो संयमी के लिए होगा, महाव्रति के लिए, साधु के लिए होगा, और साधु सब साधु के लिए नहीं होगा, विशेष योगी को होगा जो रिद्धि से युक्त हो, सात रिद्धि में से कोई एक रिद्धि हो तभी उसे मन है परे ज्ञान होगा।
सम्मान में भी हो सकता
नहीं, पंचम प्राण में। तो इस तरह ये अवधि ज्ञान और मन है परे ज्ञान, इसमें विशेषता से दोनों को हो सकता, आगे पीछे के सभी बातों को बता सकता जितनी उसकी क्षमता है, देश और काल, काल की लिमिटेशन एक दो भाव पहले का, एक दो भाव आगे का, इस तरह उसकी लिमिटेशन है। मैक्सिमम सात आठ भाव की बता सकता, संख्यात भाव बता सकता। अब मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जो परमावधि वगैरह ज्ञान होते हैं उनकी इतनी क्षमता है, संख्यात भाव को बता सकते, लेकिन जो सामान्य रूप से देशावधि है वो नहीं बता सकता है। और वो परमावधि जो होता है वो तो जिसको केवल ज्ञान होने को होगा उसी को होता है, तो वो बहुत इसमें अवधि ज्ञान में सामान्य रूप से देशावधि का ही वर्णन चलता है, जो सर्वावधि और परमावधि है वो तो महामुनि को ही होता है, तो उस स्थिति में वे संख्यात भावों का भी आगे पीछे का बता सकते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। और अब जो एक केवल ज्ञान बचा जो कि सकल प्रत्यक्ष है, जो सबको जानता है, सब द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को, सकल द्रव्य के गुण अनंत, यहां पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य कैसा है जिसमें अनंत गुण है और अनंत पर्याय है। क्वालिटी एंड मॉडिफिकेशन इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस, लेकिन वो क्वालिटी और मॉडिफिकेशन कितनी हैं तो कहते हैं इनफिनाइट। उन सबको अनंत गुण और अनंत पर्यायों को जो कि एक द्रव्य के भीतर हैं, और समस्त जितने भी द्रव्य हैं उन समस्त द्रव्यों को और उन समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसकी दो विशेषताएं होती हैं, वो स्पष्ट होता है और विशद होता है। परोक्ष ज्ञान में ये दोनों चीजें नहीं होती, ना वो विशद होता है ना स्पष्ट होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी के माध्यम से होता तो उसकी लिमिटेशन है, उसमें विशदता नहीं आती। प्रत्यक्ष ज्ञान चाहे वो देश प्रत्यक्ष हो चाहे सकल प्रत्यक्ष हो, वो दोनों ही विशद होता है, मतलब अपने विषय को बहुत पूर्ण रूप से जानता है और अपने विषय को बहुत क्लियर बहुत स्पष्ट जानता है। तो अब केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष उसका नाम ही है, तो जितने द्रव्य हैं उनकी जितनी पर्यायें जितने गुण हैं उन सबको जानता। तो फिर अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान का और इनका सबका विषय क्या है? तो कहते ये समस्त द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानता पर उनके समस्त गुण और समस्त पर्याय को नहीं जानता और इनडायरेक्ट जानता है। और अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है और मन पर्यय ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए भी दूसरे के मन में स्थित विचार को जान लेगा, बाकी नहीं जानता। मेरे हाथ में क्या है ये अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है, लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि ये बता दें कि मेरे हाथ में क्या है, तो वो ये बता देंगे कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है, ये बता सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है
मतलब मन में क्या है वही बता सकते हैं,
वो बता देंगे। अच्छा, और फिर आप अपने मन में अगर ये सोचो कि देखें बता पाते कि नहीं, 10 पैसे का सिक्का है मेरे मन में, सिक्का क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। अवधि ज्ञान तो आपके बिना पूछे और बता देगा कि आपके हाथ में ये रूपी पदार्थ होगा, मन में है तो मन के आश्रित रूपी पदार्थ हो गया, तो जान देगा मन अवधि ज्ञान। इस प्रकार ये सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई। सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष तो जो है अवधि ज्ञान मन है केवल ज्ञान और केवल ज्ञान है, परोक्ष में मति शुद्ध ज्ञान है, ये पांचों ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। यही अज्ञान भी हो जाते हैं, मिथ्या भी हो जाते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और यही सम्यक दर्शन के साथ में मिथ्या भी हो जाते, सम्यक दर्शन के साथ में यही समीचीन हो जाते हैं।
जब सम्यक दर्शन हो तब ये ज्ञान,
तभी ये ज्ञान सम्यक ज्ञान, नहीं तो फिर मति अज्ञान कहलाएगा, श्रुता ज्ञान कहलाएगा, कुअवधि कहलाएगा, और मन है परे ज्ञान तो मिथ्या और सम्यक का उसमें केवल ज्ञान में और इसमें तो भेद होता ही नहीं है। इस तरह अब जैसे कि पिछले तीसरी ढाल में पढ़ते समय अपन ने सम्यक दर्शन की महिमा गाई थी, ऐसे ही अब सम्यक ज्ञान के बारे में इतनी सी बात कह करके और आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा फिर भी अपन थोड़ा सा क्लियर कर लें इसमें कि सम्यक ज्ञान क्या है। वास्तव में तो अपने आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है, लेकिन अपने आत्मा के अलावा अनंत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी यह ज्ञान जानने में सहयोगी होता है। और जब वो अन्य पदार्थों को जान रहा है या अपने को जान रहा है, तब दोनों स्थितियों में वो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है, फिर ऐसे भेद ले लिए। तो सम्यक ज्ञान की कोई परिभाषा पूछे तो अपन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इत्यादि ये कहने ना बैठ जाए। जो आत्मा को जानता है और समस्त पर पदार्थों को जानता है वो सम्यक ज्ञान है, उसके भेद प्रभेद बहुत हैं। अब दूसरी चीज, ये जो हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह ये सब क्या है? ये सब श्रुत ज्ञान है। जब हम मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानते हैं उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। एक तो श्रुत ज्ञान का अर्थ ये है और दूसरा जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है वह भी श्रुत कहलाती है, उसको जानना भी श्रुत ज्ञान। तो इन दोनों को सम्यक ज्ञान को श्रुत ज्ञान को कंफ्यूज नहीं करना। सामान्य रूप से अपन जानते हैं कि जो श्रुत ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, ये सब किताबों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ये बहुत छोटा सा काम है, सिर्फ अकेले श्रुत ज्ञान को ही अपन ने सम्यक ज्ञान मान लिया। अपना ध्यान जाता नहीं अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, ज्यादा चला जाएगा तो केवल ज्ञान पे चला जाएगा कि केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है और ये जो किताबें हैं ये सम्यक ज्ञान है। इसके अलावा देखिए आप ऐसा नहीं जाता है ज्ञान की देखो हम पीछे जान रहे हैं, ये भी सम्यक ज्ञान है। टेप को जाना ये भी सम्यक ज्ञान, क्यों? क्योंकि हम इनको यथार्थ जान रहे हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ जान रहे हैं। इसलिए जब भी ज्ञान की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी? जो अपने आत्मा को और समस्त पर पदार्थों को जानता है या जानने में सहयोगी है वो सम्यक ज्ञान है। अगर अकेले पर पदार्थों को जानने वाला होता तो मिथ्या ज्ञान भी हो जाता। इसलिए सौ पर दोनों को जानना है। आत्मा को नहीं जानता मिथ्या ज्ञान, जानता भी है तो उल्टा सुलटा जानता है, समीचीन नहीं जानता। तो सम्यक ज्ञान में क्या विशेषता हो गई कि समीचीन रूप से अपने आत्मा को भी और समस्त पदार्थों को उसके अनंत धर्मों से युक्त। देखो ये विशेषण बहु धर्म युक्त लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, कहते अगर मिथ्या ज्ञान होगा तो अनंत धर्मों को नहीं जानेगा, बहुत अनेकांत एकांत हो जाएगा उसमें। इसलिए सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक भी है, जो अनेकांत आत्मा है वही सम्यक ज्ञान है, वरना एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। हम पहले जो है अधर्म या कि अज्ञान के बारे में चर्चा करके आए हैं कि जो किसी एक पक्ष को ही माने, अन्य को निषेध करे और विषय कषाय का पोषण करे, वो सब मिथ्या ज्ञान है। और जो वितरागता का पोषण करे और अपने आत्माओं पर पदार्थों को अनेकांतात्मक रूप से जाने, वो सब सम्यक ज्ञान। इतना इसमें क्लियर अपने को होना चाहिए। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण। ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के समान इस संसार में सुख का कारण और कोई नहीं है। सामान्य रूप से भी देखें तो अपन किसी भी चीज को जानते हैं इसलिए सुख दुख का अनुभव हमें होता है। वास्तव में सुख दुख वस्तु के आश्रित नहीं है, हमारे ज्ञान के आश्रित है सुख दुख। उसी वस्तु को जब हम ठीक जानते हैं तो हम उसी से सुख ले लेते हैं, जब उसे नहीं जान पाते हैं तो हम उसी चीज से दुख निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान के समान संसार में और कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान दुख का कारण तब होता है जब वो समीचीन ना हो, पर चूंकि हम यहाँ पर समीचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं इसलिए ज्ञान के समान तो समीचीन ज्ञान के समान तो संसार में और कोई दुख सुख का कारण ही नहीं। हमने पहले क्या चर्चा कर दी कि हमारा ज्ञान ही सुख दुख का कारण बनता है, तो फिर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि क्या ज्ञान भी दुख का कारण बनता है। तो कहते मैं उस ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूं जो दुख का कारण बनता है, वो तो मिथ्या ज्ञान है। उसी ज्ञान की वजह से तो मैं यहां दुख उठा रहा हूं। अब मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं वो समीचीन ज्ञान है और उसके जैसा तो कोई दूसरा ज्ञान है नहीं जो मुझे सुख दे सके। और अभी मैं उधर कह के आया था कि मेरी अज्ञानता मेरा मिथ्या ज्ञान ही मुझे सारे दुख दे रहा है, और अब यहां कह रहा हूं कि अगर समीचीन ज्ञान है तो फिर मुझे उससे ज्यादा कोई बड़ी सुख देने वाली चीज नहीं है। यही परमामृत, वास्तव में अमृत तो यही है। लोग जो देवताओं के अमृत की बात करते हैं का जन्म मरण और जरा रोग नष्ट हो जाता है। जन्म जरा मृति, जरा मतलब बुढ़ापा, मृति मतलब मरण, तो जन्म बुढ़ापा और मृत्यु ये तीनों रोगों का जिससे निवारण हो जाता है ऐसा परम अमृत। तो परम अमृत क्यों कह दिया? क्योंकि एक अमृत की कल्पना और है जो कि देवताओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन उनको भी जन्म मरण करना पड़ता है, इसलिए वो अमृत परम नहीं है। सबसे परम या श्रेष्ठ अमृत तो ज्ञान ही है जिसके माध्यम से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। कहते